आप सभी का स्वागत है इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में भगवद गीता के प्राथमिक कोर्स के लिए। आप यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं बहुमूल्य समय अपना निकाल करके। तो ये हमारा कार्यक्रम 4 दिन तक चलेगा। हर शाम को ठीक 7 बजे हम लोग कीर्तन प्रारंभ करेंगे और 7:15 बजे लेक्चर शुरू करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप समय पर पधारें, जिससे कीर्तन में भी पूरा भाग ले सकें और प्रवचन में भी ले सकें भाग। तो आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवद गीता का संदेश क्या है इस संदर्भ में। तो प्रारंभ करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये कोर्स में 4 दिन आने के बाद आपको क्या लाभ होने वाला है, आप उसको क्या आपको मिलने वाला है इससे। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट तब रहता है जब हमें स्पष्टतः पता हो कि हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, किस लिए हम यहाँ आए। जब तक हम वो नहीं क्लियरली नहीं समझेंगे, तब तक पूरे उत्साह से, हृदय से उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक महात्म्य एक महान आचार्य ने लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भगवद गीता को समझने से हमें क्या लाभ होता है। तो हम जरा पहले प्रारंभ करने से पहले इस महात्म्य को देखेंगे कि भगवद गीता का वास्तविक महत्व तो हमारे जीवन में क्या है। तो आचार्य लिखते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। ये प्रथम महात्म्य है। भय शोकादि वर्जितः, वह जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो हम सभी ये चाहते हैं भय और शोक से मुक्त होना, और वही प्राप्त होगा इसकी उद्घोषणा करते हैं आचार्यगण। यदि हम भगवद गीता के संदेश को समझ के अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम पूर्णतया सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार की चिंताओं से हम मुक्त होंगे और सभी प्रकार के भय से मुक्त होंगे। तो सभी इनसे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से, शोक, भय, और उनका उनकी औषधि है ये भगवद गीता। फिर आगे बताया गया है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम अभी तक न जाने कितने दुष्कर्म करते आए हैं, जानकर या अनजाने में, लेकिन भगवद गीता को जो समझेगा, उद्घोषणा की गई है कि जितने भी उसने पूर्व में दुष्कर्म किए हैं वो उन सब के फलों से मुक्त हो जाएगा। और फिर आगे कहा गया है, मलिने मोचनम पुंसाम जलस्य ना जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार अमलनाशनम। संसार मलनाशनम, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हम स्नान करते हैं प्रतिदिन शुद्ध होने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी अशुद्धि है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं सबसे बड़ी मलिनता है बार बार एक शरीर धारण करना, बार बार मरना, बार बार किसी जननी के गर्भ में आश्रय ग्रहण करना, यह सबसे बड़ी मलिनता है। तो इस मलिनता से शुद्धि होगी भगवद गीता रूपी अमृत जल में स्नान करने से। फिर आगे कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्त्रतः। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो सही बात है, आजकल सबसे बड़ी समस्या सबके सामने समय की है। आप लोग यहां पर आए, ये भी आश्चर्य की बात है, इतना समय निकाल के आए। नहीं तो किसी से कहें आप चार दिन के लिए आइए, एक एक घंटा बहुत मुश्किल है, पांच मिनट मुश्किल है सुनना। तो ऐसे समय में पूरा वैदिक साहित्य पढ़ना तो लगभग असंभव जैसा है। लेकिन यहां पर इस महात्म्य बताया गया है कि ठीक है, आपके पास समय वर्तमान समय में कम है, लेकिन यदि आप किसी इस एक भगवद गीता को, इस एक ग्रंथ को आत्मसात करें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, अपने जीवन में अपनाएं, तो यह पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये सभी वैदिक साहित्यों का सार है, एसेंस है। और विशेषता यह है इसकी कि इसको स्वयं भगवान ने अपने मुख से, भगवान के श्री मुख से यह ज्ञान दिया गया है साक्षात, इसलिए सभी वैदिक ग्रंथों में इसका केंद्रीय महत्व है। इसलिए वर्तमान समय में यदि अन्य साहित्य हम ना पढ़ें तो भी कोई बात नहीं, यदि केवल एक साहित्य को ध्यान पूर्वक पूरी सही प्रकार से पढ़ करके अपने जीवन में अपना लें तो हमारी नैया तर जाएगी, भवसागर से मुक्ति हो जाएगी, परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे कहा गया है, भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्रादि विनिस्रतः गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोप गोपाल नंदन पार्थो वत्सह सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये गीता गाय के समान है और इसका अमृत दूध कृष्ण दो रहे हैं और पीने वाले हैं अर्जुन, और फिर अर्जुन के माध्यम से हम सभी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, यानी भगवद गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें सभी लोग जिसका आश्रय ले सकते हैं, हिंदू के, मुसलमान के, भारतीय के, अमरीकी, सबके लिए है। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये सबके लिए है, ये ग्रंथ सबके लिए है। इसलिए यही वो शास्त्र है जो इस कसौटी पर खड़ा उतरता है कि यदि पूरे शास्त्र के लिए कहा जाए कि कोई एक शास्त्र है जो सबके लिए लागू होता है तो वो ये है, वो ये उसकी कसौटी पर ये ग्रंथ उतरता है। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। यदि हम कहें भाई सबके लिए ऐसा हो कि एक ही ईश्वर हो, सब एक को ही, एक ही के शरण ग्रहण करें, तो वो है देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण। भगवान कि केवल हिंदुओं के लिए ही भगवान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सबके लिए है। लेकिन उस बात को हम समझेंगे इन चार सत्रों में कि कैसे वो सबके लिए है। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र, तो ये भी हम चाहते हैं कि बहुत सारे मंत्र ना हो, एक ही हो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। वो बोलता है ये करो, बोलता है ये करो, बोलता है ये करो, तो ऐसा कोई मंत्र हो जिसमें सब मंत्र आ गए, सबका सार आ गया एक मंत्र। तो वो यदि कोई मंत्र है तो वो है एक मंत्र एक प्रार्थना, अर्थात उनके नाम का कीर्तन। और वो है जो अभी अपने सबने किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, एक ही कार्य हो, क्या? भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से ये गीता का महत्व बताया गया है। तो हम जो इन चार सत्रों में सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन में एक पूरा परिवर्तन ला सकता है, यदि आप परिवर्तन के लिए तैयार हों तो। यदि आप ऐसा नहीं सोच के आए हैं कि हम सुनेंगे एक कान से और दूसरे कान से उतना ही ग्रहण करेंगे जितना हम कुछ हद तक, बाकी सब फिल्टर कर देंगे, ऐसा नहीं। यदि आप तैयार हैं कि भगवत गीता सुनने के लिए आए हैं, यदि हमें लगेगा कि ये ज्ञान हमारे लिए ये सही है तो हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, सामान्य रूप से जो हमारा जीवन चल रहा है, सामान्य रूप से हम जिसे सच मानते हैं, हम जिसे जीवन मान रहे हैं, जिसे जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं, आप पाएंगे कि भगवद गीता का ज्ञान सुन करके हमारी सभी परिभाषाएं प्राय हमको उनको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, हर चीज के दोबारा से हमें डेफिनेशन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामान्यतया जो हम कर रहे हैं वो लोक विचार से हो रहा है, सामान्य जनता अपने अपने विचार से कार्य कर रही है। लेकिन भगवद गीता का संदेश हमें यथार्थ ज्ञान दे रहा है, और वो यथार्थ ज्ञान सामान्य लोगों के द्वारा मान्य ज्ञान से कहीं कहीं अलग है। इसलिए आप पाएंगे कि ये ज्ञान रिवॉल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है। लेकिन हम वास्तव में, हमारे जीवन में क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि इतना सब प्रयास करने पर भी हम सभी एक मत से जान सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई सुखी नहीं है, अंततः अंतकरण में नोबडी सेटिस्फाइड, कोई भी संतुष्ट नहीं है। अरबपति होकर के भी, बहुत समाज में बड़ा पोजीशन पाकर के भी नोबडी इज सेटिस्फाइड। तो इसलिए जो सामान्य चीजें जो लोग करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं और वो चीजें प्राप्त भी किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट हैं। अर्थात जो सामान्य हमारी विचारधारा है, निश्चित उसमें कहीं बड़ी कमी है, उसमें कहीं बड़ी भूल है, तभी तो सभी लोग फेल हो रहे हैं, एक भी व्यक्ति पास नहीं हो रहा एग्जाम में। सभी लोग एक ही आशा करके कार्य कर रहे हैं दैट हम लोग पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करें, पूर्ण सुखी हों, लेकिन कोई भी तो ये प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हमारी सामान्य विचारधारा में कहीं कोई बहुत बड़ी भूल है, मोटी भूल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवद गीता का ज्ञान सुन करके आप कई चीजें ऐसी पाएंगे, या हर चीज ऐसी पाएंगे सामान्यतया, जो हमारे सामान्य दृष्टिकोण से भिन्न हो, तो उसके लिए हम तैयार रहें। यदि हम उसको सही समझते हैं, उसके लिए हम तैयार रहें। तो किस प्रकार से ये भगवद गीता ऐसे हमारे दृष्टिकोण को पूरा बदल देगी, उसके लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक व्यक्ति था, एक दिन सोया रात को, और जब सोया तो उसको नींद में सपना देखना शुरू कर दिया। तो उसने सपना देखना शुरू किया कि वो एक परीक्षा देने जा रहा है, और सुबह उठता है और देखता है कि उसने जो भी कुछ पढ़ा था उसे कुछ याद नहीं आ रहा है, और इसलिए धीरे धीरे उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसका पूरा भविष्य आगे उस पर निर्भर करने वाला है, लेकिन उसकी स्मृति, उसको याद नहीं आ रहा है क्या सब ठीक से पढ़ा है, बहुत चिंता हो रही है। और फिर परीक्षा की घड़ी पास में आ रही है तो वो किस तरह से घर से निकल जाता है, और फिर देखता है तो आज भारत बंद का ऐलान है और उसकी वजह से सब ट्रैफिक भी नहीं चल रहा है, सब रोड्स भी ब्लॉक हो रही हैं, तो अभी टाइम पर कैसे पहुंचे, तो और उसकी चिंता बढ़ रही है कि टाइम पर नहीं पहुंचूंगा, परीक्षा नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। और इस प्रकार से फिर कैसे ना कैसे कहीं किसी रिक्शा को पकड़ता है और फिर रिक्शा चलती है तो रास्ते में वो रिक्शा खराब हो जाती है, हाँ, तो और चिंतित हो जाता है, ऐसे उसको पसीने आने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाता है, सब तरफ से समस्याएं उसको घेर रही हैं। हाँ, फिर एग्ज़ाम हॉल में लेट पहुंचता है और आधी आधा घंटा तो निकल चुका है, ऐसे बहुत सारी परेशानियों से वो घिरा हुआ है और चिंताओं से ग्रस्त है। तो अभी यदि आप उसके सलाहकार होते, यदि वो आपसे पूछता, मदद मांगता, तो आप कोई अलग अलग पोजीशन में हैं, कृपया अपने मोबाइल्स को बंद रखें, तो आप कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई गृहस्थ गृहिणी हैं, सबके अपने अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, तो यदि आपको कहा जाए कि आप उस व्यक्ति की कैसे मदद करेंगे, तो आप इंडिविजुअली कुछ लोग हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस सब झंझटों में है, आप उसको क्या सलाह देंगे, कैसे आप उसको उसकी इस विडंबनाओं से बाहर निकालेंगे। आप में से कुछ, हाँ माता जी, नहीं आप बैठे बैठे उत्तर दीजिए, कोई बात। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम उसको सलाह देंगे कि भाई देखो अभी भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो और शांति रखो। अच्छा, और वेरी गुड, नींद से जाग जाए क्योंकि समस्या है नहीं, समस्या यह है कि वो सपना देख रहा है, तो हम उसे बोले कि भगवान रक्षा करेंगे। कोई कई बार हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं, लोग बोलते हैं उसको पानी ला के देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे उसको, वो सब तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले समस्या ही नहीं है, समस्या ये है कि वो सपना देख रहा है। यदि वो सपने से जाग जाए, नींद से बाहर निकल जाए, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, समस्या जड़ से ही खत्म हो गई, तो फिर उसको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि समस्या जड़ से ही खत्म हो गई तो फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो भगवद गीता के माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमको दिख रही हैं, ये वास्तव में समस्याएं है ही नहीं, ये समस्याएं हमने अपने ऊपर आरोपित कर ली हैं, जबरदस्ती अपने ऊपर लाद ली हैं, क्योंकि हम सभी एक सपना देख रहे हैं, बुरा सपना, सब बुरा सपना ही देख रहे हैं। हाँ, तो आवश्यकता है मात्र उस सपने से जागने की, यानी कि अपनी वास्तविकता में स्थापित होने की, अज्ञानता से ज्ञान में स्थित होने की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, हम प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान से हम ज्ञान में स्थित हों। तो ये हम समझने जा रहे हैं भगवद्गीता के माध्यम से कि सभी समस्याओं का जड़ क्या है। हाँ, सबके अलग अलग समस्याएं हैं। हाँ, किसी को समस्या है जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को समस्या है एग्जाम पास होने में प्रॉब्लम है, किसी को समस्या है पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, किसी को समस्या है कि ये आतंकवादी परेशान कर रहे हैं, हजार हजार समस्याएं हैं। लेकिन यदि हम ये समझें जैसा हम समझने जा रहे हैं भगवद्गीता के माध्यम से, ये सब समस्याओं का मूल एक ही है। क्या है मूल? कि हम अस्वाभाविक स्थिति में है, हम सपना देख रहे हैं और सपने के अंदर हम ये सब समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो क्या है वो सपना जो हम देख रहे हैं? तो आप में से कुछ लोग शायद वहां जन्माष्टमी पे वो हमारा कोर्स अटेंड किए होंगे, जो थोड़ा हमने दिखाया था ट्रेलर, तो उसमें हमने देखा था कि हम सभी का सपना ये चल रहा है कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन हम माने हुए हैं अपने को शरीर, जो हम नहीं हैं। जैसे सपने में हम देख रहे हैं कि मैं जंगल में हूं और मेरे पीछे शेर है, तो वास्तव में मैं जंगल में नहीं हूं, मेरे पीछे शेर नहीं है। लेकिन उस समय मैं पूरा डर जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं। उसी प्रकार से हम शरीर है ही नहीं, तो फिर शरीर से जो होने वाले दुख हैं वो हमारे दुख है ही नहीं। जैसे हमारी स्थिति में सपने की जो स्थिति है, शेर पीछे पड़ा है, उससे हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वास्तविकता हमारी नहीं है। उसी प्रकार से भगवद्गीता का ज्ञान हमको ये सिखाएगा कि सभी समस्याएं हैं शरीर के स्तर पर, शरीर की वजह से ही सब समस्याएं। आप कोई भी समस्या का नाम लीजिए और देखिए कि कैसे वो समस्या शरीर की वजह से है कि नहीं। कोई भी समस्या ले लीजिए, बताइए कोई समस्या, कौन समस्या लें, क्या सबसे बड़ी समस्या आपको परेशान किए हुए है, कोई समस्या जो आपको सबसे ज्यादा परेशान किए हुए है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, सोशल लेवल पे हो सकती है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हो सकती है, हैं कमन, हाँ हाँ, पैसा, आवश्यकताएं बहुत हैं, पत्नी की बहुत सारी डिमांड्स हैं, बच्चों की डिमांड्स हैं, मेरी भी डिमांड्स हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हाँ तो क्या करें। तो आत्मा के लिए भूख जैसी कोई चीज होती नहीं है, आत्मा को खाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये जो हम कमाते हैं और किसके लिए कमाते हैं, शरीर को मेंटेन करने के लिए कमाते हैं। तो अगेन ये समस्या किसके कारण है, संबंध में है, शरीर के संबंध में, ओके। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन समस्या, ये किसके किसके संबंध में है, शरीर के। आतंकवादियों की समस्या, मरण, एक्सीडेंट्स, ये सब समस्या किसके संबंध में है, शरीर के संबंध में, क्योंकि जैसा हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद्गीता में, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा का तो शरीर के मरने पर मरण होता ही नहीं है। हाँ, फेस करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम एक शरीर को धारण किए हुए हैं इसलिए हमें फेस करना पड़ता है। यानी समस्या किस वजह से है, हमारे शरीर को धारण करने की वजह से है ना। आत्मा की अपने स्थिति में कोई मृत्यु का भय होना ही नहीं चाहिए। जब हम अमर हैं, जब हम अमर हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्योंकि अभी हमने शरीर को अपना मान लिया है, शरीर को ग्रहण किया हुआ है, इसलिए ये जो मृत्यु है इसका भय हमको होता है, बुढ़ापे से हम प्रभावित होते हैं। लेकिन आत्मा का कोई बुढ़ापा नहीं होता, आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन शरीर को होती है, और क्योंकि हम अभी शरीर से घिरे हुए हैं इसलिए हमें भी वो सब कष्ट होते हैं। अर्थात हमारे सभी कष्टों का मूल है शरीर, अन्यथा आत्मा की जो स्थिति है उसका वर्णन शास्त्र में दिया गया है कि आत्मा की स्थिति है सत चित आनंद। तीन शब्द प्रयोग में लाए हैं, सत चित आनंद, इसका क्या मतलब है, सत मीन्स, सत का अर्थ है नित्य, शाश्वत, ठीक है, शरीर शाश्वत, आत्मा शाश्वत है, नित्य है, यानी ना उसका कभी जन्म होता है ना कभी उसका मरण होता है। और भगवद गीता में बताया गया है, भगवान बताते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ना तो उसको कोई शस्त्र मार सकता है, ये बम विस्फोट आत्मा को नहीं मार सकते हैं, ये केवल शरीर को मार सकते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, नहीं अग्नि इसको जला सकती है, नहीं वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात भौतिक से बिल्कुल विपरीत इसके गुण हैं। तो आत्मा शाश्वत है और कभी भी किसी भी भौतिक परिस्थिति से वो ना तो जल सकती है ना तो मर सकती है, अर्थात कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये पहला गुण है आत्मा का। दूसरा गुण बताया गया है चित्त, अर्थात हमेशा से ज्ञानवान है, हमेशा से ज्ञानवान है। और तीसरा गुण बताया गया है आनंद, हमेशा से आनंदमय उसकी स्थिति है। अभी कंपेयर कीजिए ये तीन गुणों को और हमारे शरीर के गुणों को, आत्मा के गुणों को और शरीर के गुणों को। नित्यता, तो क्या शरीर नित्य है, नहीं है, शरीर का एक जन्म होता है और शरीर का मरण होता है, तो शरीर जो है वो अनित्य है। दूसरा ज्ञान, दूसरा गुण है ज्ञानवान। लेकिन हम देखते हैं कि आत्मा, अभी आप जैसे इस जीवन में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किए, लेकिन जैसे ये शरीर दोबारा लेना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ, इस ज्ञान का क्या होगा, गायब, जितना पढ़ाई किया, जितना पीएचडी किया, सब खत्म, फिर दोबारा से ए बी सी डी आर क, फिर दोबारा से पढ़ो, फिर दोबारा से एग्जाम्स, फिर दोबारा से पढ़ाई। हाँ, तो ये शरीर धारण करने की वजह से क्या होता है, जो भी ज्ञान है वो सब लुप्त हो जाता है बार बार, जैसे ही शरीर खत्म हुआ उसके संबंध सब ज्ञान खत्म हो गया। तो शरीर कारण है अज्ञानता का। और फिर तीसरा गुण है आनंद, तो शरीर स्रोत है सभी प्रकार के दुखों का, बीमारियां, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। तो इसलिए आत्मा और शरीर के गुण बिल्कुल विपरीत हैं। शरीर है सत तो आत्मा है सत तो शरीर है असत, आत्मा है चित तो यह है अचित, आत्मा है आनंदमय तो यह है निरानंदमय। तो इसलिए वर्तमान में जो हमारी सभी जो हम दुख भोग रहे हैं, कष्ट में हैं, उसका मूल कारण है कि हम ऐसी चीज से घिरे हुए हैं, असत से घिरे हुए हैं, इनकंपैटिबिलिटी। जैसे ब्लड ग्रुप्स रक्त चढ़ाते हैं किसी व्यक्ति को, तो दूसरे ब्लड ग्रुप का यदि रक्त चढ़ जाए तो आदमी की मृत्यु जाती है, इनकंपैटिबिलिटी बोलते हैं, दोनों का मैचिंग नहीं होता है। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में इस भौतिक जगत में हमारी सबकी स्थिति ऐसी ही स्थिति है कि दो चीज बिल्कुल विपरीत गुण वाली आपस में मिल गई है, आत्मा और शरीर। आत्मा को घेरे हुए है एक शरीर जो बिल्कुल विपरीत गुण वाला है। यह है हमारी समस्याओं का मूल, असत गृहात। शास्त्रों में इसको बताया गया है, सदा समुद्विग्न धियाम असत गृहात। मनुष्य हमेशा, मनुष्य नहीं हर जीव हमेशा चिंताओं से ग्रस्त है, अनेक अनेक चिंताओं से ग्रस्त है। क्यों? असत गृहात। जो चीज असत है, जो उसकी वास्तविकता नहीं है, उसको उसने ग्रहण कर लिया है, इसलिए वो चिंताग्रस्त है। ये मूल कारण है। अमर है लेकिन शरीर ग्रहण कर लिया है जो कि अमर नहीं है, इसलिए चिंता होती है, मृत्यु का भय होता है। हमें कोई बीमारी नहीं होती लेकिन शरीर को बीमारी होती है, वो हमने ग्रहण कर लिया, इसलिए बीमारी की वजह से हमको परेशान होना पड़ता है। तो इस प्रकार से सबसे प्रथम शिक्षा है भगवद गीता की, कि भगवद गीता की और सामान्य बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे सभी समस्याओं का जड़ है कि हम सभी अपनी अस्वाभाविक स्थिति में हैं। जैसे आप कभी एरोप्लेन में जाएं या कभी पानी के जहाज में जाएं तो आप सब क्या अनुभव करेंगे? हृदय में कहीं ना कहीं दुख दुख होती रहेगी, है ना? कहीं एरोप्लेन क्रैश हो गया तो, कहीं जहाज तूफान आ गया तो, है ना? लेकिन चिड़िया आकाश में रहती है, क्या उसको ऐसा फील होता है? या मछली पानी में रहती है, क्या मछली को कभी डर लगता है तूफान आएगा तो क्या होगा? क्योंकि मछली का स्वाभाविक स्थान है पानी, तो इसलिए उसको वहां पर तूफान आएगा तो और अच्छा लगता है, और ऊंची लहर है तो और अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए वो कष्ट का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से पक्षी हवा में उड़ता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग को हमेशा डर लग रहता है। क्यों? क्योंकि आकाश और जल हमारी स्वाभाविक स्थान रहने का नहीं है, हमारा स्वाभाविक स्थान है पृथ्वी। यानी कि निचोड़ ये कि जब भी हम अपनी अस्वाभाविक स्थिति में होते हैं तब हम चिंताग्रस्त होते हैं, और जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आते हैं तो चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे मछली, मछली पानी से बाहर होगी हमेशा तड़पेगी, तो अगर मछली की तड़पन को बंद करना है तो क्या करना होगा? वापस उसको पानी में डाल देना होगा, पानी में आते ही अपने आप वो सुखी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हैं तो हम आत्मा, हैं तो हम आध्यात्मिक, इसलिए हमारा स्थान है आध्यात्मिक जगत। हमारे को ये शरीर से बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हम अपनी अस्वाभाविक स्थिति में हैं इसलिए चिंताग्रस्त हैं। इसलिए यदि हम अपनी सभी चिंताओं को से मुक्ति चाहते हैं, सभी समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौटें, ये शरीर बंधन से मुक्त हों, अस्वाभाविक स्थिति से निकलें, असत्य निरानंद ये शरीर से हम मुक्त हों। नटशेल ये भगवद गीता का संदेश है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आत्मा को अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस हमको लाने के लिए, ये एक जर्नी है जिसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। ये है आत्म साक्षात्कार, यानी कि अपनी वास्तविकता को पहचानना। हम इस देह बंधन में कैसे आए, हम इस शरीर बंधन में कैसे और क्यों आए, इसको समझना, और कैसे इससे निकल सकते हैं, और निकल करके कहां जाएंगे ये भी जानना जरूरी है ना। निकलने के बाद क्या होगा हमारा, कहां जाएंगे, हमारी परमानेंट स्थिति कहां है फिर, ये सब विषयों को समझना, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और यही विषय है भगवद गीता का। और इन विषयों को समझे बिना आत्म साक्षात्कार, शांति, सुख संभव नहीं है। आप लोग सामान्यतः देखते हैं आजकल बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या क्या होता है, लेकिन वो सब देह के स्तर पर ही कार्य बताते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या है, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा पोस्चर लो, थोड़ा लंबी सांस लो, दिन में सुबह 4 बार लंबी सांस लो और फिर जाओ और अपना जॉब करो और बीच बीच में फिर 10-10 आधा आधा 1-1 घंटे बाद फिर थोड़ा रेस्ट लो और थोड़ा चारों तरफ ग्रीन रखो। ये सब सुपरफिशियल तरीके काम नहीं आने वाले, क्योंकि ये सब आपको रखे हुए हैं शरीर के स्तर पर ही, तो समझ जड़ तो वहीं की वहीं रही। एक डॉक्टर है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं हमको, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ मल्लम देता है, वो फोड़ा बैठ जाता है लेकिन फिर दूसरी जगह फोड़ा निकलता है, फिर दोबारा मल्लम लगाते हैं, फिर तीसरी जगह निकलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी है, जब तक वो रहेगी तब तक बीमारी आती रहेगी। दूसरा डॉक्टर है, ब्लड चेक करता है, देखता है अरे यहाँ पर आपको इन्फेक्शन है, ब्लड का इन्फेक्शन ट्रीट करना पड़ेगा, तो वो इन्फेक्शन ट्रीट होगा तो फिर पूरी तरह से बीमारी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सामान्यतया हम लोग ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, शांति शांति शांति, हाँ ये मंत्र ले लो करो बस शांति हो जाएगी। कैसे शांति होगी? जब तक हम अपनी अपने को शरीर माने हुए हैं, जब तक हम देह के स्तर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब तक शांति संभव नहीं है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए भगवद गीता के संदेश से हम लोग समझने वाले हैं, सीखने जा रहे हैं कि हमें अपनी पहचान को समझना है। तो ये बड़ा सरल है विषय। कई बार लोग सोचते हैं ये तो बड़ा जटिल विषय है, कैसे माने कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा दिखती नहीं है, है ना, हमने किसी को आत्मा को नहीं देखा, है ना, हमने किसी को नहीं देखा, किसी ने आत्मा को नहीं देखा, तो हम कैसे जानेंगे कि आत्मा है? तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को इन आंखों से देखने पर ही हम उसकी उपस्थिति को समझें, जरूरी नहीं है ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अभी मान लीजिए दिन का समय होता, आप सभी यहां बैठे होते, तो सुबह 10 बजे ये प्रश्न किया जाता कि क्या इस समय आकाश में सूरज है दिन के 10 बजे, तो आप सभी का उत्तर क्या होता? यस है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता तो क्या इस समय आप सूरज को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको स्पष्ट है कि सूरज इस समय आकाश में है। क्यों आप इतने स्पष्ट हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में आ रहा है, जहां सूरज का प्रकाश है निश्चित है कि सूरज है, सूरज का प्रकाश है मतलब सूरज है, इसमें कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं है। तो सूरज देखने की जरूरत नहीं है, सूरज के प्रकाश से ही समझा जाता है कि सूरज है। उसी प्रकार से आत्मा के लक्षणों को यदि हम पहचान जाएं, तो उन लक्षणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा है, भले ही हम उन आंखों से, इन आंखों से नहीं देख पाए, आवश्यक नहीं है। तो क्या है आत्मा के लक्षण? जो इस मृत देह को चलाने वाला है वो है आत्मा। जब तक इस देह में चेतना रहती है वो लक्षण है आत्मा का। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, शरीर की चेतना समाप्त हो जाती है, वो निर्जीव हो जाता है, अचेतन हो जाता है। अब इस समय हमें कोई मच्छर भी काटेगा, तुरंत हमको पता लगेगा वो मच्छर काटा, थोड़ी सी भी कुछ तकलीफ होगी तुरंत हमको अनुभव होगा। लेकिन एक शरीर जो मरा हुआ है, उसको काट के टुकड़े भी कर दीजिए, उसको कोई अनुभूति नहीं होगी। तो ये जो चेतना है, ये जो चेतना है हम सब में कि आई एग्जिस्ट, मैं हूं, आप सभी के अंदर ये चेतना है कि मैं हूं, आई एम एग्जिस्टिंग, है ना। थोड़ा एक मिनट विचार कीजिए, सबके अंदर ये अंदर एक विचार है कि मैं हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, है ना? ये जो चेतना है कि मैं हूं, ये लक्षण है आत्मा का। इसी की वजह से हम धीरे धीरे हम सब अनुभव करते हैं, हम दुख सुख ये सब अनुभव कर रहे हैं, ये सब उसी का ही चेतना का विस्तार है। हाँ, तो एक शरीर जिसमें हम देखें कि ये चेतना नहीं है, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, हिलडुल नहीं रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, तो हम घोषणा करते हैं ये शरीर मर गया है, ये व्यक्ति मर गया है, ये शरीर अभी मृत है। इसी आधार पर हम डिक्लेयर करते हैं। हाँ, डॉक्टर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? दे अलग अलग देखते हैं। अगर कोई मेडिसिन यहाँ जानने वाले हों तो अलग अलग टेस्ट करते हैं, नाक के आगे कॉटन लगा के देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, सांस सांस देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं और सेंसेशन देखते हैं कि सेंसेशन, अगर जीरो सेंसेशन है देन दे डिक्लेयर ही इज डेड। ओके, तो ये जो चेतना है ये लक्षण है आत्मा का, ये लक्षण नहीं है शरीर का, क्योंकि शरीर तो मरे हुए व्यक्ति का और जीवित व्यक्ति का एक ही है। इस समय जो हमारा शरीर है और जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका शरीर, उसमें क्या अंतर है बताइए, उसमें क्या अंतर है रसायनों की दृष्टि से, क्या उसमें कोई अंतर है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोनों के शरीरों में कोई अंतर नहीं। तो फिर क्यों वो क्यों क्यों वो चलायमान है, क्यों वो चल रहा है और क्यों वो मृत शरीर नहीं चल रहा है? कि उसमें एक ऐसी चीज नहीं है जो उसको चला रही थी, अर्थात जीवन, जीवनी शक्ति जिसे हम कहते हैं आत्मा। तो वो जो चीज जो चला रही थी वो जड़ पदार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ पदार्थ तो सबके सब हैं, मृत शरीर में भी सबके सब जड़ पदार्थ हैं, सबके सब केमिकल्स हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को हम नहीं चला सकते, हम उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते। अर्थात भौतिक पदार्थों से अलग एक चीज है जो चेतना का कारण है, चेतना का कारण भौतिक पदार्थ नहीं है, दो चीजें हैं, एक भौतिक पदार्थ और एक जीवनी शक्ति जिसे हम आत्मा कह रहे हैं। कोई भी कार चल रही है, स्पष्ट है कार के अंदर ड्राइवर बैठा है तभी कार चल रही है, नहीं तो कार नहीं चल सकती। तो इस शरीर का जो ड्राइवर है वो है आत्मा। तो आजकल वैज्ञानिक लोग एक दृष्टिकोण रख रहे हैं कि भाई हम तो आत्मा को देखने ही हैं, हम तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो आत्मा दिखती नहीं है। इसलिए ये सब रसायनों के मिश्रण से ही, जब रासायनिक मिश्रण एक स्तर पे पहुंचते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं, और जब उसमें कुछ ऐसे कुछ चीज हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तब वही रसायन मृत जैसे लगने लगते हैं, ऐसा उनका मानना है। और आजकल ये विचारधारा बहुत प्रचलित है, सब लोग इससे पीड़ित हैं इस विचारधारा से, इसलिए सब लोग सोच रहे हैं आत्मा कोई नहीं है, जब आत्मा नहीं है तो परमात्मा भी कोई नहीं है, इसलिए सब कुछ नास्तिकता है, कुछ नहीं है, सब जड़ पदार्थ है, इसलिए मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, इसलिए जो भी करो कोई देखने वाला नहीं है, पाप करो जो भी करो कोई देखने वाला नहीं, इससे पूरा समाज का दृष्टिकोण बदल गया। इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आत्मा है या सब कुछ केवल जड़ पदार्थ है। तो यदि वैज्ञानिक लोगों का ये जो कहना है कि भाई सब केमिकल्स है, सब रसायन है और कुछ नहीं है, तो ठीक है, मृत शरीर में वो रसायन जो कमी हो गए हैं या जो आप सोच रहे हैं रिएक्शन प्रॉब्लम हो गया है, अगेन आप उसमें वो रसायन डाल दो और उसको जीवित कर दो। अगर आप कह रहे हैं कि रसायनों की वजह से व्यक्ति जीवित नहीं है, मर गया है, यानी कि आप तो जानते हैं कि वो कौन से रसायनों की वजह से ऐसा हुआ है, तभी तो आप ये कह पा रहे हैं कि रसायनों की वजह से ऐसा हुआ है। तो यदि आप जानते हैं तो ठीक है, उन रसायनों को मृत शरीर में डाल करके उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दीजिए। ये लकड़ी है, ये मृत है, इस लकड़ी को दोबारा से पेड़ बना दीजिए, इसमें दोबारा फल आने लगे कर दीजिए। तो आज तक संभव नहीं हो पाया है, ना ही संभव होने की कोई संभावनाएं भी दिख रही हैं दूर से दूर तक। तो इस दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम समझ सकते हैं कि जीवित और मृत व्यक्ति में अंतर मात्र रसायनों का नहीं है, रसायन तो दोनों में है ही, समान है, अंतर है ऐसी शक्ति का जो जड़ से अलग है, जो जड़ नहीं है, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, जो जीवनी शक्ति है। फिर हमने एक उदाहरण दिया था उस दिन भी और दोबारा इसको देना चाह रहे हैं कि एक सामान्य बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। कोई भी व्यक्ति मरता है तुरंत हमारी अनुभूति होती है, अरे चला गया वो व्यक्ति, चला गया है ना, अरे हम उसका शरीर देख रहे हैं, वही नाक, वही कान, वही हाथ मुंह, सब वही है, लेकिन फिर भी हमको अंदर से एकदम से स्फूर्ति होती है, नहीं अभी वो आदमी यहां नहीं है, अभी वो चला गया। इसलिए हर भाषा में मरने को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चल बसा, गतो रहो, चला गया, पास्ड अवे, यानी कि मृत्यु के समय में सबको अनुभूति होती है कि वो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा था एक्चुअली वो अभी चला गया है, अभी तो उसका केवल देह रह गया, इसलिए हम रोते हैं, नहीं तो क्यों रो रहे हैं आप, वो तो वही व्यक्ति, अगर हम देह ही हैं, अगर हम केवल शरीर हैं तो फिर रोना क्यों, तो देह तो अभी भी है, लेकिन हम जानते हैं नहीं अभी देह है, लेकिन जो व्यक्ति, जो मेरा मामा था या जो मेरा जो भी संबंधी था, अभी वो वहां नहीं है, चला गया। तो हम सबको एक सामान्य अनुभूति होती है। फिर एक दूसरा उदाहरण लें तो इस जीवन में ही हम अनेक अनेक शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, एक शरीर मरता है दूसरा शरीर आता है। जैसे हम सबका एक जब जन्म हुआ था और जब हम छोटे बच्चे थे, जैसे बच्चा है अभी, ऐसा हमारा भी सबका शरीर था, लेकिन आज वो शरीर नहीं है, वो शरीर मर गया, अब ये दूसरा शरीर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 7 साल के अंदर हमारे जितने भी अणु हैं जिनका शरीर बना होता है वो एक एक अणु बदल जाता है, पूरा नया हो जाता है, पुराने सब खत्म हो जा करके नए बन जाते हैं 7 साल के अंदर। हाँ, तो वो शरीर अभी नहीं है, वो मर गया है वो शरीर। लेकिन क्या हम शोक करते हैं मैं मर गया, मैं जब बच्चा बड़ा होता है वो शोक करता है मैं मर गया, नहीं उसे पता है कि मैं नहीं मरा। क्या माता पिता शोक करते हैं? बड़ा बच्चा जब बड़ा होता है तब शोक करते हैं, ओ मेरा बच्चा चला गया। उनको पता है नहीं मेरा बच्चा तो वही वही के वही है, वो तो शरीर बदल रहा है, शरीर मर रहा है, एक शरीर मर के दूसरा शरीर आ रहा है। लेकिन हमारे माता पिता को, संबंधियों को, मित्रों को, सबको यही अनुभूति होती है स्पष्ट कि वो जो व्यक्ति है अंदर इस शरीर के वो तो वही है, वो नहीं मर रहा है, केवल शरीर मर रहा है। अर्थात शरीर के मरने पर इस जीवन में भी हमने अनुभव किया है कि हम नहीं मरे। बच्चे का शरीर मरा, हम नहीं मरे। जवानी का शरीर मरा, हम नहीं मरे। यानी कि शरीर मरने पर हम नहीं मरे, अर्थात हम शरीर से अलग हैं। करेक्ट, हम शरीर से अलग हैं। जैसे आप मकान बदलते हैं, हाँ, एक मकान छोड़ करके आप दूसरे मकान में गए, हाँ, तो आपने मकान बदला, एक छोड़ करके दूसरे मकान में, यानी कि मकान और आप अलग अलग हैं, तभी तो ये बात आती है मकान बदलने की। तो उसी प्रकार से हम शरीर बदलना, अर्थात शरीर हम नहीं है, हम शरीर को धारण किए हुए हैं। जैसे आप एक मकान में रहते हैं और फिर मकान बदलते हैं, ऐसे ही हम शरीर बदल रहे हैं। जैसे आप पोशाक बदलते हैं, भगवद गीता में बोलते हैं कि जैसे आप ड्रेस बदलते हैं वैसे ही हम शरीर, आत्मा शरीर बदलता है। तो ये भगवद गीता का पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिस अज्ञानता से सभी कष्ट उदित होते हैं और जिस ज्ञान से सुख का रास्ता खुल जाता है। ये प्रथम ज्ञान है जो हमें समझना है कि हम शरीर से अलग हैं, हम जड़ पदार्थ नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम आत्मा हैं, भौतिक से बिल्कुल अलग। ठीक है, तो अभी ये विषय तो हम कुछ हद तक समझे, तो फिर हम देखते हैं कि ये आत्मा ही कारण है इस शरीर को चलाने का, या आत्मा होती है जब तक तब तक ये शरीर के द्वारा हम बहुत कुछ काम करते हैं। ये माइक बनाया, ये माइक बनाने के लिए किसी इंजीनियर ने माइक बनाया, लेकिन जब तक वो इंजीनियर के अंदर आत्मा थी, यानी जब तक वो आत्मा उस शरीर में थी तब तक उसने ये माइक बना पाया। करेक्ट, तो इस प्रकार से हम जो भी कुछ बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, ये शरीर के अंदर बहुत शक्ति है, शरीर बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है। हम बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, हम कार बना रहे हैं, हम हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक उस शरीर के अंदर आत्मा है, अर्थात एनर्जी जो दे रहा है पीछे, सभी कार्यों के पीछे, सभी भौतिक जो भी कार्य हो रहे हैं, जो बिल्डिंग बन रही है, जो भी जड़ पदार्थ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? आत्मा। उस सबके पीछे कारण है आत्मा। जितना भी इस भौतिक जगत में मनुष्य या जानवर जो भी कुछ कार्य कर पा रहे हैं, इस भौतिक जगत को जो भी नया नया बना पा रहे हैं, उसके पीछे कारण है शक्ति देने। शक्ति कौन सी है अल्टीमेटली? वो है आत्मा। क्या जड़ पदार्थ अपने आप कुछ कर सकते हैं? ये माइक बना है लोहे का, प्लास्टिक का, तो ये लोहा प्लास्टिक एक जगह पड़ा हो, 1000 साल के बाद भी क्या संभावना है कि ये लोहा प्लास्टिक अपने आप मिलकर के माइक में कन्वर्ट हो जाएगा? है संभावना? नहीं है संभावना। जब तक उसके पीछे एक जीवित व्यक्ति नहीं हो तब तक वो नहीं होगा। आप गृहणियां हैं, आप खाना बनाते हैं, तो आप दाल और सब्जी, मतलब दाल और कच्ची सब्जी और नमक ये सब लाके रख दीजिए, और चूल्हा रख दीजिए, और गैस सिलेंडर रख दीजिए, और फिर चले जाइए सोने के लिए, तो क्या होगा? खाना बनेगा? नहीं बन सकता। खाना बनाने के लिए एक जीवित व्यक्ति को उसे मिलाना पड़ेगा सही प्रोपोर्शन में, कितनी आंच देनी है, कितनी कितनी उसमें डिटेल्स होती हैं। तो जीवित जब तक व्यक्ति है तब तक ये सब संभव है। एक छोटी सी चीज भी हम नहीं बना सकते, एक जड़ पदार्थ छोटी सी चीज नहीं बना सकते। अर्थात जड़ पदार्थ के पीछे होता है आत्मा, जीवनी शक्ति, तभी जड़ पदार्थ काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ये एक सिद्धांत समझने का। उसी सिद्धांत के आधार पर अभी हम देखें कि जैसे ये एक हम छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ये स्पीकर बनाया, स्पीकर का काम क्या है? आवाज को प्रसारित करना। लेकिन ये स्पीकर की आवाज तभी आ रही है जब ये गले से मेरी आवाज निकल रही है, तो यहां भी एक स्पीकर फिट है, जैसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से वोकल कोर्ड्स, मेडिसिन की भाषा में वोकल कोर्ड्स। तो ये स्पीकर है, अभी ये स्पीकर बनाने के लिए एक इंजीनियर चाहिए, और कंपेयर कीजिए इस स्पीकर को इस स्पीकर के साथ, क्या तुलना है, कौन सा स्पीकर हाई क्वालिटी का है, ये स्पीकर, इसकी कोई जवाब ही नहीं है, इसमें तो कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है, कितने दिन खराब हो जाता है, ये स्पीकर देखिए कितना बोलते हैं हम लोग, फिर भी चलता रहता है। अभी कंपेयर कीजिए एरोप्लेन, आदमी ने बनाया, और फिर एक तरफ है मच्छर, कौन सी मशीनरी ज़्यादा डेवलप्ड है, कभी देखते हैं हम लोग क्रैशिंग होते, मच्छर क्रैश हो रहे, कभी क्रैश नहीं होते, एरोप्लेन्स क्रैश होते हैं, और वो कितना साइज है उसका मच्छर का, उसके अंदर सब सिस्टम सेट है, अंदर अंदर रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन, सब कुछ छोटे से के अंदर है। अब वो देखिए वो बैट चमगादड़ इस रूम के अंदर आ जाए तो ऐसे ऐसे बहुत तेज गति से जोड़ती है, लेकिन कभी टकराती नहीं। एक एरोप्लेन को या एक हेलीकॉप्टर को बोलिए इतनी छोटी जगह में आने के लिए, संभव नहीं। तो उसके अंदर कितने सब सिस्टम्स हैं, कितनी सुंदर मशीन है वो, एक चमगादड़ की मशीन, या ये शरीर जो पूरा कितना कॉम्प्लिकेटेड शरीर, हाँ कितनी सुंदर मशीन है ये। तो आदमी ने जो मशीनें बनाई हैं उसका, उसके साथ हम तुलना करें प्रकृति में जो मशीनें उपलब्ध हैं, ये शरीर, ये पूरा संसार, हाँ इसके अंदर कितनी अद्भुत अद्भुत मशीनें हैं, ये पूरी प्रकृति एक मशीन है, और उससे बहुत सुंदर सुंदर मशीनें बन रही हैं। हाँ तो एक हम लाइट बनाते हैं, ये छोटी सी ट्यूब लाइट और ये बड़ी बड़ी हैलोजन, और कंपेयर करें सूरज से, कोई है कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ तो आप सोचिए कि एक आत्मा जो ये शरीर से इतना सुंदर सुंदर चीजें मशीनें बना रही है, वो आत्मा कितनी महान है, लेकिन उस आत्मा का क्या जो ये मशीनें बना रही है, जो मच्छर बना रहा है, जो ये शरीर बना रहा है, जो सुंदर गुलाब बना रहा है। हम एग्जीबिशन में जाते हैं, गुलाब एक ड्रॉ किया होता है, पेंटिंग किया होता है, हम सोचते हैं वाह क्या ड्रॉइंग, क्या पेंटिंग है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, लेकिन उसमें नेचुरल ना तो सुगंध होती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, नेचुरल गुलाब। तो जिस आर्टिस्ट ने नेचुरल गुलाब बनाया है, नेचुरल कमल बनाया है, उसकी उसका क्या कहना। तो जब एक आर्टिफिशियल गुलाब को बनाने के लिए एक आत्मा चाहिए, तो नेचुरल गुलाब को बनाने के लिए एक बहुत सुंदर आत्मा चाहिए, बहुत बुद्धिमान आत्मा चाहिए, कहीं कहीं ज़्यादा बुद्धिमान आत्मा चाहिए। तो जिसे हम शास्त्र की दृष्टि से कहते हैं परमात्मा, सुप्रीम सोल। तो इसमें क्या मुश्किल है समझना, एक छोटे से इस डब्बे को बनाने के लिए आत्मा चाहिए, तो ये पूरे संसार को मशीन, बड़ी मशीन को बनाने के लिए एक बड़ी आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, जिसे हम भगवान कहते हैं। तो इसमें क्या मुश्किल है, अरे कैसे समझे भगवान है, अरे भी क्यों नहीं समझ सकते भगवान है, इसमें क्या मुश्किल है। जैसे इस छोटी सी मशीन को बनाने के लिए एक आदमी चाहिए, ऐसे बड़ी मशीन को बनाने के लिए बड़ा आदमी चाहिए, दैट इज भगवान। अभी कोई कहे कि नहीं ये सब अपने आप आ जाता है, सब बाई चांस, एक नया थ्योरी, नया थ्योरी नहीं, एक प्राचीन विचार है जो आज बहुत प्रचलित है, भले कोई स्कूल में जाए कि नहीं जाए, कि भगवान भगवान कोई नहीं है, ये तो सब अपने आप केमिकल्स के रिएक्शन से अपने आप पूरा संसार सृष्टि अपने आप बन गई है, पहले सब केमिकल्स थे, बहुत हजारों सालों की बात है, कुछ बिजली चमकी और फिर रसायनों में कुछ चेंज हुआ, कुछ घटना घटी, और फिर धीरे धीरे केमिकल्स में नए नए केमिकल बनने लगे, और फिर उससे धीरे धीरे एक सेल बन गया, और फिर बहुत समय तक पड़ा रहा, और फिर पता नहीं कैसे कैसे उसमें से धीरे धीरे दो सेल बन गए, और दो के चार बन गए, और फिर धीरे धीरे ऐसे कर करके आदमी बन गया अपने आप। उसके पीछे किसी ने बुद्धि नहीं लगाई, किसी ने प्लानिंग नहीं की, अपने आप जड़ पदार्थ मिल करके ये सब बन गया। तो ये ऐसे ही है कि कोई बोले कि कोई बहुत, ये भगवद गीता की रचना कैसे हुई, बहुत समय पहले की बात है, 5000 साल पहले एक प्रेस थी, उस प्रेस में बड़ा धमाका हुआ, और धमाके के बाद में भगवद्गीता बन गई। तो क्या कभी संभव है कि धमाके से ये भगवद्गीता संभव है? तो जब धमाके से भगवद्गीता संभव नहीं है, तो ये धमाके से पूरी सृष्टि का बनना अपने आप संभव है? कोई भी चीज बिना हेतु से, बिना किसी डिजाइनर के, बिना किसी व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति के नहीं बनती है। तो हम इस पूरी सृष्टि का अवलोकन कर रहे हैं, तो बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही है सब चीजें, तो क्या इसके पीछे कोई बनाने वाला नहीं है? अपने आप कैसे हो सकते, जड़ पदार्थ अपने आप कैसे कुछ काम कर सकते हैं? उनके पीछे बुद्धि नहीं है कि क्यों काम करना है, तो वो क्यों काम करेंगे? इसीलिए इसके लिए भगवान को समझने के लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ज्यादा पीएचडी होते हैं उनको ज्यादा समस्या होती है भगवान को समझने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं हम तो पीएचडी, हम कैसे भगवान को माने, हम तो पढ़े लिखे हैं। हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि हम स्वीकार नहीं कर सकते कि भगवान है, क्योंकि हमें अपनी आंखों पर भरोसा है, हम अपनी साइंस पर भरोसा, हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। यदि भगवान हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर आ सकते हैं तो हम समझेंगे भगवान है, अगर टेस्ट ट्यूब में नहीं आ सकते लेबोरेटरी में तो हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। लेकिन एक बच्चा भी समझ सकता है कि भगवान है, जहां बच्चा है जहां माँ है तो वहां पिता होना ही चाहिए, सामान्य बुद्धि है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, तो बच्चा है, पृथ्वी माँ है तो पिता होना ही चाहिए, इस प्रकृति के पीछे एक बनाने वाला होना ही चाहिए, सामान्य बुद्धि है, कोई बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है। लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए, बस अगर हम कॉमन सेंस रखते हैं तो बड़ा आसान है समझना कि भगवान है। तो अभी ये विषय समझ लेने के बाद कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम आत्मा है और एक परमात्मा है भगवान, तो अभी क्या संबंध है आत्मा में, शरीर में यानी कि जड़ पदार्थ में और भगवान। तो हम देखते हैं हर चीज नियंत्रण में है उस परम नियंता के, कोई ना कोई एक परम नियंता है, तभी सब चीज संचालित हो रही है। कहीं भी कोई भी व्यवस्था अच्छी चल रही है इसका मतलब उसके पीछे एक व्यवस्थापक है। उसी प्रकार से इस पूरी जगत में सुंदर व्यवस्था चल रही है, सूरज अपने समय पर आ रहा है, सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, इसका मतलब एक नियंत्रण करता है। और हमें यह समझना है कि वो नियंत्रण करता के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, 100% हर चीज के लिए हर क्षण हम निर्भर हैं उस नियंत्रण करता के ऊपर। कैसे? अभी हम लोग सांस लेते हैं, हर मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, कभी हमको महसूस भी नहीं होता है कि इसमें भी क्या कोई बहुत बड़ी चीज है सांस लेना भी। लेकिन जिसको पानी में डुबोया जाए उसको अहमियत पता लगेगी, सांस की क्या अहमियत है उसके लिए, वो एक सांस के लिए तड़पेगा, है ना, और उसको पानी से बाहर निकालिए। लेकिन हम लोग हर दिन आराम से सांस ले, हमको पता नहीं लगता है कि सांस क्या है। लेकिन ये सांस के पीछे कोई बहुत बड़ी व्यवस्था है कि हम सांस ले पा रहे हैं, है ना। ये हवा है, हमने आपने तो किसी ने नहीं बनाई ना हवा, ये सांस लेने की प्रक्रिया, ये हमारे जो फेफड़े हैं लंग्स, वो सांस जब अंदर जब हवा लेते हैं तो फूलता है। आप यदि मेडिसिन कुछ लोग जानते हो, लंग्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे एयर स्पेसेस हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों एयर स्पेसेस हैं, हवा के आने से वो ऐसे फूलते हैं, हवा उसमें अंदर जाती है और फिर वहाँ रक्त की वेन्स हैं, रक्त जिनके माध्यम से जो ऑक्सीजन जो अंदर जाती है वो ऑक्सीजन फिर ब्लड में चली जाती है और फिर वो ब्लड से पूरे शरीर में जाती है। लेकिन हम तो ये सब नहीं कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि लंग्स हैं, कैसे एक्सपेंड हो रही हैं। और हम कहें कि ठीक है वैज्ञानिकों को पता लग गया कि लंग्स हैं, लेकिन उनको जब नहीं पता तब भी वो तो सांस ले रहे थे, और पता लगने के बाद भी सांस ले रहे हैं, अपनी जानबूझ करके सांस नहीं ले रहे हैं, सांस तो अपने आप चलती है, हृदय की धड़कन है। हमें नहीं पता कि हृदय कैसे धड़क रहा है, क्यों धड़क रहा है, कैसे, हमको नहीं, अपने आप धड़क रहा है। और जब बंद होगा तब भी अपने आप बंद होगा, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर जब बंद हो जाए तब भी बंद हो जाए। यानी कि हमारा सांस लेना भी किसी के और हाथ में है, किसी और के हाथ में है सांस लेना, हृदय धड़कन करना, सब कुछ किसी और के हाथ में है। हम खाना खा रहे हैं, क्या खाते हैं हम लोग, दाल चावल इत्यादि खाते हैं, ये सब क्या हमारे हाथ में है? क्या आदमी अपनी फैक्ट्री में दाल चावल बना सकता है? वो ये बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन बिल्डिंग भी कैसे बना रहा है, इसका रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, वो भी आदमी नहीं बना रहा। तो आदमी क्या बना सकता है? आदमी केवल जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा बदल सकता है, और वो बदलने की बुद्धि भी कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। जब अगर आप सोचें क्यों, मैं तो मेरी बुद्धि है ना, ये तो मैं इंटेलिजेंट हूं, ठीक है, अभी पैरालिसिस हो जाए, ब्रेन काम करना बंद हो जाए तो आपकी बुद्धि कहां गई फिर? आप सोचें मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये हाथ चल रहा है, अभी लकवा मार जाए बंद हो जाएगा सब कुछ। तो यदि आपके हाथ में था तो फिर आप चलाओ, लेकिन आप देखते हैं कि जब लकवा हो गया तो आदमी गया, तो इसका मतलब कोई और व्यक्ति है जो उसको कंट्रोल किए हुए था, करेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जीवन, ये पूरा हमारा शरीर, जो भी हम सांस, सब कुछ निर्भर है भगवान। इसको शास्त्र में बताया गया है, नित्य नित्य नाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामा। हम नित्य हैं, उधर भगवान नित्य हैं। नित्य नित्य नाम चेतनस चेतना नाम, सॉरी चेतनस चेतना नाम, भगवान भी चेतन है, वो भी व्यक्ति है, चेतना व्यक्ति, निर्जीव नहीं है, वो भी चेतन व्यक्ति, हम भी चेतनावान है। एको बहु नाम, हम वो एक है और हम अनेक हैं, लेकिन वो एक, हम अनेक उस एक पर निर्भर हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एको बहु नाम यो विदधाति कामान, हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से 100% निर्भर हैं उस एक पर। ये शास्त्रों का वचन है और ये सामान्य बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं। अर्थात निष्कर्ष ये कि हम सभी उस भगवान पर निर्भर हैं, नियंत्रित हैं, हम भी और पूरा जगत और जो भी कुछ है वो सब उस नियंत्रणकर्ता के अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। और भगवत गीता में इसी की पुष्टि भगवान करते हैं, मयध्यक्षेण प्रकृति सुयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। कई बार लोग सोचते हैं भगवान की क्या जरूरत है, सब प्रकृति कर रही है ना, लेकिन प्रकृति तो जड़ है, जड़ पदार्थों की बनी है, तो प्रकृति मशीन है। जैसे आप देखें तो मशीन है, रोटी बनाने की मशीन है, काफी आप इधर से आटा अंदर डालो उधर से बाहर से रोटी बन के निकली, ऐसी मशीन तो ठीक है, रोटी बन के निकल रही है, लेकिन उस मशीन के पीछे एक जीवित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है, तभी वो मशीन बनी और तभी वो ऑपरेट हुई, ऑपरेट करने वाला कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से प्रकृति भी एक बड़ी मशीन है, वेरी नाइस बिग मशीन, बिगेस्ट मशीन, लेकिन उस मशीन के पीछे कोई ऑपरेटर तो होना चाहिए, कोई इसको बनाने वाला तो होना चाहिए। हम बोलते हैं सब नियम है, प्रकृति के नियम है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पर हर नियम के पीछे कोई बनाने वाला होता है, नियम अपने आप से तो नहीं बनते। नियम है कि वो दाहिने हाथ से ओवरटेक करो, तो ये नियम के पीछे कोई बनाने वाला है। तो उसी प्रकार से प्रकृति के नियम के पीछे भी कोई बनाने वाला है, प्रकृति अपने आप से कैसे काम कर सकती। तो प्रकृति की अध्यक्षता में है भगवान, प्रकृति के ऊपर अध्यक्षता है भगवान की। तो इस प्रकार से ये विषय, अगला विषय है जो हमें समझना है कि ये भौतिक प्रकृति, ये आत्मा, ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि हम सब भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं तो क्या हम जानते हैं कि भगवान के नियम क्या हैं? आप यहां इंडिया में रह रहे हैं, आप यहां पर मान लीजिए ट्रैफिक जा रहे हैं, अभी रोड पर जा रहे हैं कार लेकर के या स्कूटर लेकर के, यदि आप उन नियमों को जाने बिना रोड पर निकल जाएं तो क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। तो आप सोचें वो क्या है नियम का, मुझे क्या समझना है, मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, चल सकते हैं लेकिन दंड भुगतेंगे, फिर चलोगे तो दंड भुगतो। तो उसी प्रकार से हमने जाना कि कोई सुप्रीम कंट्रोलर है, नियंत्रण करने वाला है, यानी कि उसके नियम होंगे जिसके माध्यम से वो नियंत्रण कर रहा है। तो क्या आप और हम कोई जानते हैं, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं हम जानने का कि वो नियंत्रणकर्ता के नियम क्या हैं? सामान्य व्यक्ति, सामान्य रूप से समाज के अंदर क्या हमें बताया जा रहा है, क्या जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उस नियंत्रणकर्ता के नियम क्या हैं? ये सृष्टि किस आधार पर चल रही है, हमसे क्या अपेक्षा की जा रही है, वो नियंत्रणकर्ता हमसे क्या चाहता है, क्यों हमको बनाया है, क्यों इस संसार को बनाया है, हमें आखिर मनुष्य जीवन में क्या करना है, क्या इस विषय पर कोई विचार हो रहा है? क्या विचार है? जन्म लो बेटे, पढ़ो। क्यों पढ़ो? पैसा कमाना है। पैसे क्या करना है? खाना है। कहीं आया भगवान बीच में? सृष्टि के पीछे क्या हेतु है? कोई आया बीच? कोई नहीं आया। यानी पूरी तरह से अज्ञानता में काम हो रहा है कि भगवान को, भगवान के प्रति अज्ञानता, आत्मा के विषय में अज्ञानता, भगवान के नियमों के विषय में अज्ञानता, और फिर जब तकलीफ होती है, जब परेशानी होती है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, क्यों मेरे को पकड़ लिया, अरे पकड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तुम रॉन्ग साइड पे चल रहे हो तो पकड़ेंगे ही ना, फिर उसे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम नियमों को जाने बिना इस जगत में जिएंगे और फिर नियमों से फिर दंडित होंगे तो फिर परेशानी भुगतेंगे ही। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें चाहिए जानना कि अभी मुझे जीवन में जानना है कि वो नियम क्या है। और ये जानने का जो अवसर है वो केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त है। जानवर गलती करेंगे, भुगतेंगे और भुगतते रहेंगे, गलती करते रहेंगे और भुगतते रहेंगे। दे कैन नॉट रिफॉर्म देमसेल्फ, वो अपने को सुधार नहीं सकते, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। लेकिन आपकी और हमारी बुद्धि इतनी विकसित है कि हम गलती करके सुधार अपने को सुधार सकते हैं। दंडित हो रहे हैं, जन्म मृत्यु हो रही, बुढ़ापा, बीमारी, कंफ्यूजन, ये सब क्या क्यों है? प्रश्न कीजिए, तभी तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन हम प्रश्न ही नहीं करेंगे, बस ऐसे ही जो हो रहा है होने दो। कुछ लोग बोलते हैं गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो फिर क्या जरूरत है भगवद्गीता पढ़ने की? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो फिर आपको भी ये कहने की जरूरत क्या है? वाई यू हैव टू गिव दिस मैसेज? जो हुआ, आपके कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। फिर जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, आप नियम का उल्लंघन करोगे भुगतोगे, ये सच्चाई। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को समझना, भगवान के नियमों को समझना, अपने को समझना, इस प्रकृति को समझना, जगत को समझना, ये सब चक्कर क्या है, क्यों है, कैसे है, सबको समझना, तभी हम सुख शांति की अभिलाषा कर सकते हैं। अज्ञानता में रह करके शांति की खोज करना, सुख शांति की खोज करना पागलपन है, वो केवल जेल मिलेगी और कुछ नहीं होगा। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में ही ये अवसर आपको प्रदान किया गया है, और ये कुछ साल ही हमारे साथ पास में है, और वो भी पता नहीं कितने हैं, ये कोई गारंटी नहीं है किसी का। किसी के पास 10 साल हो सकते हैं, किसी का 20 साल हो सकते हैं, किसी का 1 साल हो सकता है, कुछ नहीं। इसीलिए ये कोर्स के बाद अपेक्षा है कि इस विज्ञान को समझ करके हम उत्सुक हों कि अभी तो मुझे भगवद गीता के संदेश को गहराई से समझना ही है, भगवान को समझना ही है, इन नियमों को समझना ही है। बाकी जो शरीर के लिए मुझे कुछ करना है कार्य, वो तो ठीक है, वो तो शरीर यापन के लिए करना है, दैट्स ओके। लेकिन जीवन केवल उसी के लिए नहीं बना है। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं, और कुछ नहीं रह गया। आप यूएस पिज्जा में चले जाओ, वहां पिज्जा खाने के लिए, फिर चाइनीज वहां खाने, चाइनीज में चले जाओ, आज ये देख लो, आज वो कर लो, सब कुछ बस जीवन में ऐसे अलग अलग चीजें अनुभव करते रहो। अभी हमारी छुट्टियां हैं, अभी हम लोग न्यूयॉर्क घूमने जाएंगे, सिंगापुर घूमने जाएंगे। अरे सिंगापुर, न्यूयॉर्क में भी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही है, और क्या नई चीज है वहां? जानने योग्य चीज है यहां, नहीं तो पूरे क्या मिलने वाला है? तो शरीर की आवश्यकताएं हैं, दैट्स ओके, सो वी हैव टू फुलफिल देम, उसमें डिनाई नहीं है। शरीर क्या है? यंत्र है, कार है आपकी, तो कार में पेट्रोल डालना जरूरी, डालिए। लेकिन आप सोचें कार में पेट्रोल डालने से मेरा खाना भी हो गया, मेरे को खाने की जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। तो उसी प्रकार से इस शरीर के लिए कार्य करना है, लेकिन उसके अलावा साथ साथ और ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा, भगवान को समझना, आत्मा को समझना, ये विषय समझना जरूरी। और मनुष्य जीवन में ही ये संभव है। इसलिए आप यदि ज्यादा बुद्धिमान है, जो जितना ज्यादा बुद्धिमान उसे चाहिए कि शरीर की आवश्यकताओं को उतना ही कम समय में और आसानी से पूरा कर दे, तब कहेंगे कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। लेकिन आजकल की परिभाषा उल्टी है, जो जितना बुद्धिमान है वो उतना ही ज्यादा शरीर के लिए परेशान है, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा समय वही निकाल रहा है। हम बोलते हैं उसकी जॉब बहुत बढ़िया जॉब लग गई, उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। मतलब क्या है कि बाकी लोग यदि 10 घंटे काम करते हैं तो वो 14 घंटे काम करेगा, बाकी लोग अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति 10 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन उसको 14 घंटे काम करना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा बुद्धिमान हो रहा है वो उतना ही ज्यादा बिजी है मेटेरियल लाइफ में। लेकिन बुद्धिमान का प्रमाण ये होना चाहिए कि ज्यादा बुद्धिमान मतलब कम समय में शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जिससे समय को बचाए भगवान को समझने में। नहीं तो शरीर तो यापन जानवर भी कर रहे हैं, बिना पीएचडी किए जा क्या जानवर नहीं खा रहे, सो रहे, संतान उत्पत्ति कर रहे? वो तो वो भी कर रहे, तो उसमें क्या बड़ी बात है? और जहां तक सुख की बात है तो खाने का सुख, आपको 5-star होटल में जाकर के जो सुख मिल रहा है वो सुअर को गटर में रहने में खाने में वही सुख मिल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस। उसके लिए वो उतना ही सुख है, यू कैन नॉट कंपेयर, उसको उतना ही सुख है, उसको वही खाने में वही सुख है। तो फिर क्या क्या जीवन इसीलिए है केवल आहार निद्रा भय मैथुन में बिताने के लिए? नहीं, वो जीवन का पूरी तरह दुरुपयोग है। तो ये जो कोर्स है इससे ये अपेक्षा है कि हम थोड़ा जगेंगे, जागृत होंगे, सोए हुए हैं, उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वरम निबोधता, उठो जागो, और जो परम लक्ष्य इस समय आपके लिए उपलब्ध है उसको प्राप्त करो मरने से पहले। जब ये शरीर मर जाए उससे पहले पहले ये सिद्धि प्राप्त कर लीजिए। एक बार मर गया तो फिर विवश होना पड़ेगा 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर प्राप्त होने के लिए, जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार। फिर आप बोले आई एम सॉरी गिव मी सम 1 ईयर मोर यमराज जी, थोड़ा गलती हो गया, अभी 1 साल और दीजिए, अभी मैं पूरा भगवदगीता पढ़ के सब कर दूं, एक क्षण भी नहीं मिलेगा उस समय। है तो ना, एग्जाम जब आया था तो हम कहते हैं काश पूरा साल पढ़ा होता तो अभी ये स्थिति नहीं आती, लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकते। और ये परीक्षा तो कभी भी आ सकती है, उसका बाकी परीक्षाओं का पता होता है 1 साल बाद आने वाली है, ये परीक्षा कभी भी आ सकती है। इसलिए वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी, एवरी टाइम रेडी, हर क्षण रेडी रहना है। तो इसलिए ये हमारी अपेक्षा है इस कोर्स से कि हम उत्सुक हों, समय निकालें भगवद्गीता का अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए इन विषयों को। तो आज की कक्षा हम समाप्त करेंगे यहाँ पर इस विषय के साथ कि हमें ये समझना जरूरी है भगवान कौन है, हम कौन है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है तो फिर कौन है भगवान, कैसे समझें उसको भी, क्या है उसको भी। ठीक है, समझ तो गए कि भगवान है, आप समझ गए कि हाँ हम आए हैं तो ट्रैफिक सब अपने लाइन पे चल रहा है तो ट्रैफिक पुलिस वाला कोई होना चाहिए, कंट्रोलर कोई होना चाहिए, पर कौन है वो, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों वो ये सब करता है, डिटेल उसका तरीका क्या है जानने का, वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अभी यदि इस विषय में आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या आप उससे सहमत नहीं हो किस चीज से जो हमने कहा, वही डिफरेंस, आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है, आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं और वो सृष्टि का निर्माण करना उनके लिए कोई उनका मुख्य कार्य नहीं है, लेकिन आत्मा कुछ टेबल बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, तो आत्मा छोटा है, आत्मा केवल शरीर को चला सकता है, भगवान पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो आत्मा अणु है, भगवान विभु है, दोनों के गुण समान हैं। जैसे समुद्र के पानी की थोड़ी से पानी लेके लीजिए तो वो थोड़े से पानी में भी वही गुण होंगे जो समुद्र के में पानी में है, लेकिन मात्रा अलग अलग है। समुद्र का पानी महान विशाल काय है और हमारे हाथ में पानी छोटा है, सोना है, आपके अंगूठी में सोना है, तो सोने की खान में जो सोना है और ये सोना एक ही है, लेकिन वो खान है और ये थोड़ा सा, तो दोनों समान भी हैं और अंतर भी है। आत्मा परमात्मा समान है गुणों की दृष्टि से और अलग हैं मात्रा की दृष्टि से। भगवान नियंत्रण करता है, हम नियंत्रित हैं। हाँ, तो अभी हमने पूछो यदि तुम भगवान छो, हाँ तो प्रश्न ए के कोको लोग कहे छे कि जे महात्मा बनी जाए छे के कहे छे महात्मा छू अने हूँ ज भगवान छू अने मने पूजो, तो हमको उनसे पूछना चाहिए कि महात्मा जी यदि आप भगवान हैं तो फिर आपको तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए, आपको मरना नहीं चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा मरना मतलब कि कोई आपके ऊपर है जो आपको बूढ़ा होने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप कैसे भगवान हैं कि आपको कोई बूढ़ा करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको अपने हृदय के लिए चिकित्सा कराने के लिए स्टर्लिंग हॉस्पिटल में जाना पड़ता है बाईपास सर्जरी के लिए। भगवान का मतलब सुप्रीम परम, तो यदि उसको भी वो भी मरता है बूढ़ा बीमार होता है तो फिर वो कैसे भगवान हो सकता है, तो कभी जीव भगवान नहीं बन सकता, भगवान भगवान रहता है, जीव जीव रहता है। हाँ, जीव जब भगवान का दास है और जब उसको प्राप्त करता है तब वो महात्मा कहलाता है, जब जीव भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता तब दुरात्मा कहलाता है, जब जीव भगवान का सेवक बनता है तब उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा भगवान नहीं है, महात्मा भगवान का सच्चा सेवक है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माशिता भजन्ते अनन्य मनसो, महात्मा की परिभाषा भगवद्गीता में दी गई है। भगवान कह रहे हैं महात्मा वो है जो मेरी दैवी प्रकृति में है और अनन्य मन से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, वो महात्मा कहलाता है। પર એ લોકોનો બેડા પાર કરવાનું પરિભાષા શું છે? બેડા પાર એટલે શું? સ્વામીજી મારી નોકરી નહીં લાગી, જા તારા બેડા પાર થઈ ગયા એટલે શું નોકરી લાગી ગઈ? પહેલા 4 કલાક કામ કરતો હતો, હવે તો 10 કલાક કામ કરવું પડશે. શાબાશ. તો એસે થાપે થપ્પે સે ક્યા ફાયદા હૈ? જન્મ મૃત્યુ કે ચક્ર સે પર એક જ્ઞાની છે એની પરિભાષા શું છે? જ્યારે સાચા જ્ઞાન આપે ત્યારે જ એને જ્ઞાની કહેવાય. આ કોઈને કોઈ પોશાક પહેરી લીધી હોય કે લાંબી દાઢી હોય તો એના લીધે મહાત્મા કહેવાય એવું નથી. મહાત્મા જેવા કાર્ય કરે તો એ મહાત્મા કહેવાય, પછી દાઢી લાંબી હોય કે ના હોય એ મુખ્ય નથી. મુખ્ય છે આચરણ, કાર્ય. જ્ઞાની પુરુષ ત્યારે જ જ્ઞાની કહેવાય જ્યારે એને અંદર ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય. કોઈ લેબલ લેબલથી જ્ઞાની નથી બનતા. પણ લોકો શા માટે ઊંધા રસ્તે જાય છે? હા, પણ લોકોની એવી ઈચ્છા છે. લોકોને કહો કે તમે જાણો ભગવાન કોણ છે, તો કહે તમે મને નોકરી લગાવી દેશો ને મારી, બસ મારા માટે તમે જ ભગવાન ના. તો એટલા માટે એવા ભગવાન આવી જાય છે સમાજમાં જે લોકોને ઈચ્છાઓ પૂરી કરાવે અને લોકો એ લોકોને ભગવાન માનવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. તો સમસ્યા આપણી છે, આપણે નથી ઈચ્છતા ભગવાનને જાણવા. એટલા માટે આપણે છેતરવા માટે ઘણા લોકો સ્વામી બનીને આવી જાય છે. પણ જ્યારે આપણે હૃદયમાં ભગવાન વિષય સમજવાની સાચી ઈચ્છા હોય તો આપણે ઢોંગી કોણ છે અને સાચા કોણ છે એમાં ડિફરન્શિયેટ કરી શકીએ. એ ડિફરન્શિયેશન સંભવ છે જ્યારે આપણે હૃદયમાં ઈચ્છા હોય કે મને ભગવાન વિશે ખરેખર જાણવું છે અને જાણવું છે અને એની શરણમાં જવું છે, ત્યારે સંભવ છે. ઓર કોઈ પ્રશ્ન? હાજી હાજી. આત્મા હૃદય, હૃદય ઇન ધ રીજન ઓફ હાર્ટ, શાસ્ત્ર બતાવ્યા ગયા હૈ, વો હૃદય કે એરિયા મેં હૈ, ઇન ધ રીજન ઓફ હાર્ટ. યસ. હા, તો મન વિચલિત હોતા હૈ કાબુ મેં કરને કે લિયે ક્યા કરના ચાહિયે? તો મન, જૈસે હમ વો ઉદાહરણ, આપ એરોપ્લેન મેં જા રહે હૈ તો આપકો ચિંતા લગેગી, તો એસે હી મન અપની સ્વાભાવિક સ્થિતિ મેં નહીં હૈ. ઉસકા જો વિષય, મન કા કામ ક્યા હૈ? ચિંતન કરના હૈ ના, થિંકિંગ, ફીલિંગ, વિલિંગ, યે તીન કાર્ય હૈ. થિંકિંગ સોચના, ફીલિંગ મહેસૂસ કરના, એન્ડ વિલિંગ ઈચ્છા કરના. તો જબ મન કા વિચાર કરને કા વિષય ભગવાન હોંગે, ભગવાન કી સેવા, તબ વો વહાં સ્થિર હોગા. ઓર જબ મન કા વિષય ઇન્દ્રિય ભોગ હોગા, સમાજ મેં ભોગ કરને કી ઈચ્છા, જબ મન કા યે વિષય હૈ તબ કભી વો સ્થિર નહીં હો સકતા, ચંચલ રહેગા. યે ગહેરા વિષય હૈ થોડા, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको गहरे में जाना पड़ेगा कि मन क्या है. ये हम आगे बताएंगे आने वाली क्लासेस में, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, शरीर क्या है, इनका संबंध क्या है, आत्मा के साथ कैसे कंट्रोल, ये सब विषय आएंगे तब हम समझाएंगे डिटेल में कैसे मन. हाँ जी. यस. ભગવાન આત્મા કે સાથ બસે. હા, જૈસે એક અગ્નિ હૈ ઓર અગ્નિ મેં છોટે છોટે ચિંગારે હૈ, તો જો ચિંગારે હૈ વો છોટે હૈ ઇસીલિયે યદિ વો અગ્નિ સે બહાર નિકલ જાયે તો ઉનમે બુઝ જાને કી ક્ષમતા હૈ. લેકિન બડી અગ્નિ મેં નહીં હૈ, लेकिन छोटी चिंगारी जब तक अग्नि के संपर्क में है तब तक जलेंगे, लेकिन जैसे ही बड़ी अग्नि से बाहर निकले तो बुझ जाएंगे. अभी यदि वो अंगारा सूखी घास पर गिरेगा तो फिर भी क्षमता है जलने की. अगर मिट्टी में गिर जाएगा तो बुझने की ज्यादा संभावना, और पानी में गिर जाएगा तो बिल्कुल. लेकिन आप उसी पानी में गिरे हुए अंगारे को भी यदि अग्नि के संपर्क में ले आएंगे थोड़े समय में फिर जलने लगेगा. तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं लेकिन हैं छोटे, इसलिए हम अज्ञानता के कंट्रोल में आ सकते हैं. लेकिन भगवान विभू हैं इसलिए वो कभी अज्ञानता के कंट्रोल में नहीं आ सकते. ये अंतर है हम में और भगवान.
आपने जो भाई का रिप्लाई दिया,
हाँ जी,
आपने कहा कि जो मन या जो होता है यहाँ पर होता है,
मन नहीं, आत्मा, रीजन ऑफ हार्ट।
ध्यान करते हैं तो यहाँ जो ध्यान करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कहते हैं, ना तो कभी यहाँ पर,
हाँ,
तो ये क्या है और ऐसा क्यों?
हाँ, उनका प्रश्न है कि कुछ ध्यान करने के लोग कई बार बोलते हैं भ्रकुटी के बीच में ध्यान कीजिए, कई बार बोलते हैं हृदय में ध्यान कीजिए, तो वो क्यों कहते हैं ऐसा? तो एक ध्यान योग पद्धति है जो भगवद गीता में वर्णित है, छठे अध्याय में अष्टांग योग पद्धति का वो अंग है। तो उसके अंतर्गत 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, समाधि, इस प्रकार से प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारण, समाधि। तो उसके अंतर्गत पहले यम और नियम और फिर आसन और फिर प्राणायाम। तो जो प्राण शरीर के अंदर अलग अलग प्राण वायु हैं, 5 प्रकार की प्राण वायु हैं जिनके अंदर आत्मा तैरता है प्राण वायु के अंदर। तो उस प्राणायाम के माध्यम से इन प्राण वायुओं को पहले बैलेंस किया जाता है, फिर जो आत्मा की जो स्थिति है, योगीगण अगर उस अष्टांग योग क्रिया में आगे प्रगति करें तो वो आत्मा को ऐसा निश्चित कर सकते हैं कि शरीर छोड़ने के समय वो आत्मा किस रंध्र से बाहर निकले। तो शरीर के अंदर अलग अलग रंध्र हैं, छेद हैं। तो अगर तो एक ब्रह्म रंध्र है, अगर उससे आत्मा बाहर जाती है तो उच्च लोकों को जाती है। तो अष्टांग योग की क्रिया है जिसके अंदर योगी जन प्राण वायु को कंट्रोल करके धीरे धीरे आत्मा की स्थिति को चेंज कर सकते हैं और अंत में उसको निकाल सकते हैं अपनी डिजायर के अनुसार, समय जिस समय में चाहें उस समय में। तो ये एक विधि है, ध्यान विधि जिसको बोलते हैं। लेकिन वर्तमान कलयुग के लिए ये विधि संभव नहीं है। इस विधि से भगवान का साक्षात्कार करना इस कलयुग के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं, इक्का दुक्का कोई हो। क्योंकि यदि हम देखें कि यम नियम केवल आसन लेने से ही काम नहीं चलेगा, यम नियम वो भी बहुत कठोर है। अच्छा, सबसे पहले तो एक एकांत में जाना पड़ेगा, सिटी में रह करके वो आप बोलो अष्टांग योग करोगे तो आप अपने मन को संतोष दे सकते हो कि हम अष्टांग योग कर रहे हैं, ये इज नॉट पॉसिबल। ब्रह्मचर्य व्रत पहले होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन कलयुग के लिए जो मेडिटेशन प्रोसेस बताया गया है, कृतयेत ध्यायतो विष्णु, वो सतयुग का तरीका था अष्टांग योग विधि। या इट इज दैट प्रोसेस ऑफ दैट होल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन जिसमें व्यक्ति आत्मा को प्राणवायु से बैलेंस करके हृदय के अंदर विराजमान विष्णु का ध्यान करता है और धीरे धीरे उनके इस अपने चित्त को पूरा उन पर केंद्रित करता है, वो विधि को अष्टांग योग विधि कहते हैं, ध्यान योग विधि। वो इस युग में संभव नहीं है। कुछ संभव है, मीन्स कुछ करके आपको कुछ थोड़ा शांति मिलेगा, दैट इज ओके, लेकिन उससे मुक्ति या भगवत प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि आप उस प्रोसेस को पूरी तरह से नहीं कर सकते।
ध्यान करते समय हमें ये जो कंसंट्रेशन होता है,
हाँ,
वो हमें कहाँ करना
चाहिए? या तो सबसे पहले तो आप जो लोग भी ऐसे ध्यान करते हैं या करवाते हैं उनसे पूछिए कि किस पर ध्यान करें। ध्यान का मतलब कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो ध्यान बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं लाइट के ऊपर ध्यान दो, सामने एक बल्ब लगाओ, बल्ब, शास्त्रों में कहीं नहीं वो लाइट के ऊपर ध्यान करना। लाइट के ऊपर ध्यान करने से क्या होगा? विष्णु के ऊपर, हृदय के, परमात्मा के ऊपर ध्यान करने की विधि को बताया गया। तो सबसे पहले तो विषय समझना चाहिए, लेकिन हमें पहले बताया कि वो विधि इस समय संभव नहीं। तो वर्तमान समय में जो विधि है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, ये जो हरे कृष्ण ध्वनि है, इस ध्वनि के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, इसको सुनने में। इस ध्वनि के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा और जो गंदगी है वो हटेगी और तब हम अपने हृदय के अंदर विराजमान भगवान का दर्शन, अपना दर्शन कर पाएंगे। तो ये कलयुग के लिए विधि है कि हम हरे कृष्ण कीर्तन के माध्यम से और जप के माध्यम से इस हरे कृष्ण ध्वनि के ऊपर अपने चित्त को केंद्रित करें। और कोई प्रश्न? तो अभी हम लोग 5 मिनट के लिए फिर से ये कीर्तन करेंगे और फिर प्रसाद आप लोग पाइएगा। कुछ सज्जनगण या माताएं आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, तो आपसे विनती है कि कार्यक्रम के बाद, प्रसाद के बाद में आप जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर एक टेबल है जिसमें आप अपना, जो लोग रजिस्टर नहीं कराएं तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और कुछ पुस्तकें वहाँ प्रदर्शित की गई हैं तो आप उन पुस्तकों को देखें और आप चाहें उन पुस्तकों को ले सकते हैं। फिर इस 4 दिन के सेशन के अंत में जो श्रोतागण चारों के 4 दिन आएंगे उनको हम एक भेंट देंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चारों के 4 दिन अटेंड करें जिससे कि आप पूरा इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि ये सब रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक विषय के और दूसरा विषय। यदि एक विषय मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ये 4 के 4 दिन आइए, और यदि कोई सेशन मिस हो जाता है तो CD उपलब्ध होगी लास्ट डे में, तो आप ये लेक्चर CDs ले सकते हैं और फिर सुन सकते हैं।